ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी हैं। सभी हैं, लेकिन नंबर वार यथाशक्ति कहेंगे। तो जब हम बाबा के बनते हैं, तब से ही ये त्याग का पाठ हमारा शुरू हो जाता है। तपस्या भी शुरू हो जाती है और सेवा भी शुरू हो जाती है। त्याग के फल स्वरूप हम भाग्यवान बने हैं। हमने अपनी शूद्र जीवन, जो पुरानी दुनिया की जीवन थी, उसका त्याग किया तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने। सभी को टाइटल है, कोई भी है, चाहे वो घर में रहते हैं, चाहे वो सेवा केंद्र पर समर्पित हैं, सभी क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण बने। तो ये श्रेष्ठ जीवन हमें मिली, लेकिन इस त्याग के भाग्य को पद्मा पदम भाग्य में बदलने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। तो जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जितना गुणों और शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग करते जाते हैं, उतना ही भाग्य की लकीर को हम लंबा करते जाते हैं। तो सबसे पहला त्याग देह अभिमान का त्याग या देह भान का त्याग बाबा ने हमसे कराया। रोज बाबा मुरली में कहते हैं, या पहला पाठ ही हम सीखते हैं, कि मैं इस देह से भिन्न चेतन शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। ये देह का मैंने आधार लिया है, ये मेरा असली घर नहीं। मेरा असली घर परम धाम है, परम धाम से मैं इस सृष्टि पर आई हूं। तो कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्म करना, देही स्थिति में रहना, आत्माभिमानी स्थिति में रहना, वो देह भान का त्याग हमने कितना किया है, उस अनुसार ही हमारा दैवी गुणों का स्वरूप या ईश्वरीय गुणों का स्वरूप बनता है। हम भक्ति में गाते थे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन मंदिर में या मूर्ति के सामने सिर्फ गाकर आते थे, बाद में सब कुछ मेरा है ना। अब बाबा के सामने कहीं हम ऐसा तो नहीं करते, हम कहते तो हैं, बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, और फिर तेरा की बजाय कभी तेरा कभी मेरा, ये वाला हिसाब तो नहीं है। बाबा कहता है कि त्याग माना क्या, एक बार कोई भी वस्तु किसको दे दी, त्याग माना दूसरे को दे दिया हमने, हमने अपने पन से उसका त्याग कर दिया, अपना अधिकार उस पर से हमने छोड़ दिया, तो जिसको दे दी वो वस्तु उसकी हो गई। और अगर वो हमको देता भी है फिर से, तो वो उसकी अमानत है हमारे पास, वो हमारी चीज नहीं मानी जाएगी, उसको हम बहुत उसे संभालेंगे। तो अब ये जो तन है हमारा, जो हमने बाबा को दिया, बाबा कहता है सेवा अर्थ, बाबा ने आपको ये तन दिया है, हमने तो तन तेरा कह दिया बाबा को, तन मन धन तेरा, तो अब बाबा ने हमें वो सेवा अर्थ दिया है तो उसे उसी रीति से हमें यूज करना है। जैसे बाबा तन में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तन का आधार लेते हैं, कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, ऐसे ही मैंने भी जब सेवा है कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया और फिर उसके बाद मेरा जो असली स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, हम अपने उस आकारी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं। यानी जब चाहें हम इस शरीर का आधार लें और जब चाहें इस शरीर से न्यारे हो जाएं। तो देह में फंसना नहीं और ना ही किसी दूसरों की देह के भी आकर्षण में आना, देह भान का त्याग माना, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, दूसरों को भी उनके आदि अनादि स्वरूप से देखना और अनुभव करना और व्यवहार में आना। तो ये है देह भान का त्याग, जो पहला पाठ और अंतिम पाठ भी बाबा कहता है कि अंत तक भी हमें ये पक्का नहीं होता कि मैं कौन हूं। कितना पक्का रहता है सारे दिन में मैं आत्मा हूं, हाँ इस शरीर से न्यारी हूं। जब योग में बैठते हैं तब कोशिश करते हैं और फिर सारा दिन जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो कहीं ना कहीं पहले कर्म कॉन्शियस होते हैं, फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस भी होने लग जाते हैं। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं वैसे ही हमारे पुराने संस्कार फिर कहीं ना कहीं इमर्ज होते हैं, क्योंकि देह अभिमान का संबंध विकारों से है, देह अभिमान विकारों की जड़ है, आत्माभिमान उन्नति की सीढ़ी है, ऐसा हम कहते हैं। तो देह अभिमान में आए तो कोई ना कोई विकार प्रकट जरूर हो जाएगा, कभी काम, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ आ जाएगा, कभी मोह आ जाएगा। फिर देह के साथ देह के संबंधों का त्याग, जैसे कोई पुराने घर का त्याग करता है, कोई संन्यास करते हैं दुनिया में भी, तो वो घर बार भी छोड़कर जाते हैं, तो घर में जो सामग्री है वो सब सामग्री का भी त्याग करते हैं। ऐसा नहीं केवल घर छोड़ करके गए और घर की सामग्री साथ लेकर के गए। तो इस देह की सामग्री कौन सी है? देह का संबंध दो तरह से है, एक संबंध है कर्मेंद्रियों से, देह के साथ देह की कर्मेंद्रियां भी हैं जो सामग्री है, और दूसरा संबंध है मनुष्यों से, जो लौकिक अलौकिक हमारे संबंध हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग। तो कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, न कि अधीन। स्वराज्य अधिकारी बने माना कर्मेंद्रियों से मालिक बनकर के कर्म कराने वाले, कर्मेंद्रियों के वश होने वाले नहीं, कि आंख से जो नहीं देखना चाहते वो हमने देख लिया। इसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं क्रिमिनल आई और सिविल आई। तो सिविल आई माना आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि है, शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि है, वो है सिविल आई। और अगर इसके अतिरिक्त कोई भी दृष्टि जाती है हमारी, हमने कुछ गलत देख लिया, तो वो हो गई क्रिमिनल आई। कानों के द्वारा जो मुझे नहीं सुनना है वो ना सुने। बाबा की श्रीमत प्रमाण ज्ञान रतन ही हमारे कानों में छ जाएं या दूसरी बातों से हम प्रभावित ना हो। मुख से वो बोल नहीं निकले जो हमें नहीं बोलने चाहिए ना। आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाया। ऐसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, उन पर भी हमारी कंट्रोलिंग पावर हो। मन में जो संकल्प जब करना चाहें वो हम कर पाए, मन को जिस स्थिति में स्थित करना चाहें वो स्थिति में मन स्थित हो जाए। ऐसा नहीं कि हम मन को चाहते कुछ और हैं और मन जाता कहीं और है। जैसे नए नए जो ज्ञान में आते हैं वो पूछते हैं मन को एकाग्र कैसे करें, मन लगता नहीं है, मन भटक जाता है। तो अगर हमारी भी यही शिकायत है इसका मतलब अभी तक हमारे मन पर अधिकार नहीं है, मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अभी तक नहीं आई है। बुद्धि सही समय पर सही निर्णय करे, परिस्थिति समय निकल जाए और फिर समझ में आए अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, और फिर बाद में हम पश्चाताप करें, तो सही निर्णय ले पाए। संस्कार हमारे सदा ही ईश्वरीय संस्कार कार्य करें, सदा ही दैवी संस्कार कार्य करें। जो बाबा के संस्कार हैं वो मुझ आत्मा के संस्कार हैं, न कि मेरे देह अभिमान के, माया के संस्कार भी बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं। तो अगर हम अधिकारी हैं तो सदा ही शान में रहेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, सदा मौज में रहेंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं, सदा कंफर्ट में रहेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बाबा कहते हैं। तो अगर हम किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाते हैं तो बाबा कहता है उदास होने वाले माया के दास हैं, यानी एक ना एक कर्मेंद्रिय उनको धोखा देती रहती है। कभी आंख धोखा देती है तो कभी कान धोखा देते हैं तो कभी मुख धोखा देते हैं, जिसको बोलते हैं कि चूहा निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है। फिर सोचते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये एक ही कर्मेंद्रिय तो है, थोड़ा ऊपर नीचे करती है। तो बाबा कहता है कि अगर हम उसको अलबेलेपन में चलाते हैं तो वो हमको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति से वंचित करा देगी, क्योंकि माया उसी रूप में फिर हमारा सामना आकर करेगी। क्योंकि जो कमजोर गेट होता है ना, चोर उसी दरवाजे से आता है, जो मजबूत होता है वहां से चोर नहीं आता है। तो माया भी वही स्थान देखती है, हमारी वही कमजोरी देखती है और उसी के द्वारा ही वो फिर बार बार चांस लेती रहती है। और तीसरा त्याग है यह कर्मेंद्रियों का देह के संबंध। और दूसरे देह के संबंध है लौकिक और अलौकिक संबंध में मोह का त्याग, जिसको नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बाबा कहते हैं। तो लौकिक संबंधों के त्याग में बाबा ऐसे नहीं बोलते हमें कि छोड़ दो उनको, छोड़ना नहीं है, लेकिन उनके प्रति अपने भाव और वृत्ति को परिवर्तन करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने सब लौकिक परिवार वालों के साथ पूरा साथ निभाया, सभी बाबा के साथ थे ओम मंडली में, लेकिन वो लौकिक वाला भाव उनका समाप्त हो गया। जो लौकिक जीवन में था कि ये मेरे पिता हैं, वो मेरे पति हैं, या जिसके भी चाचा थे, ताऊ थे, ससुर थे, बाबा जो भी जिसके संबंध में थे, बाबा के लगभग काफी रिश्तेदार थे, लेकिन जैसे ही बाबा का भाव बदला उनका भी बाबा के प्रति भाव बदल गया। कि जैसे बाबा सबके लिए बाबा है, ऐसे हमारे लिए भी बाबा है। वही भाव, किसी ने भी फिर वो पुराने रूप से बाबा को संबोधित भी नहीं किया। इवन मम्मा की माँ भी यज्ञ में रहती थी, लेकिन मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। तो चलो हम आज परिवारों में रहते हैं, तो हम वो संबंधों में जो संबोधित करते हैं वो तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तो यज्ञ बना, भट्टी बनी, लेकिन हम भाव और वृत्ति तो बदल ही सकते हैं। तो लौकिक संबंधों में भी मेरेपन का भाव नहीं, लेकिन मेरा कौन है, मेरा कौन है, बाबा। तो एक बाप दूसरा ना कोई, या बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, और बाकी सब जो भी संबंध हैं वो सेवा के संबंध हैं। चाहे हम परिवार में रहते हैं, लेकिन ये समझ है, मेरा पति, मेरी पत्नी या बच्चे, ये सब हम आपस में सेवा के संबंध में हैं बाबा के, लेकिन बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया है, मैं ट्रस्टी हूं, ये भाव। तो ये त्याग किया, जो लौकिकता थी, जो मोह था। कईयों का तो जो मोह होता है वो मोह, क्योंकि परिवार वाले बहुत विघ्न डालते हैं, बहुत ज्ञान में आने के लिए रोकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी या कष्ट उत्पन्न करते हैं, तो फिर अपने आप ही वो मोह उनके प्रति छूट जाता है। ज्यादा मोह उनके निमित्त होता है जो बहुत स्नेही सहयोगी होते हैं। वैसे दोनों तरह से मोह होता है, बाबा कहता है कई बार उल्टा हिसाब किताब भी होता है। एक स्नेह सहयोग के कारण मोह होता है कि ये मुझे जब भी मुझे समस्या होती है, या जब भी मुझे कोई उलझन होती है मन की, मेरे दिल की बात मुझे करनी है, तो हमेशा ये मेरे दिल की बात सुनते हैं और उस समय मेरे साथ खड़े होते हैं, एक सपोर्ट होता है हमें, तो वो भी एक मोह का कारण बनता है। जो भी हमारे प्रति ऐसा विशेष सहयोग का भाव रखते हैं, तो लौकिक संबंधों में ये प्राप्तियां हमें होती हैं, और जब वो प्राप्ति होती हैं तो मन की रग उस आत्मा के प्रति जाती है। लेकिन मानो कोई आत्मा आपके विपरीत, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, या हमेशा ही वो ऐसी कोई ना कोई उनके अंदर कमी है जिसके कारण आप परेशान होते हैं, तो आपको लगता है ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके वो जो कर्म है वो आपके दिल पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म घृणा आ जाती है उन आत्माओं के प्रति, कभी कभी ईर्ष्या भाव भी आ जाता है। तो वो जो घृणा भाव है, क्योंकि मेरी स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही, हम जैसा चाह रहे हैं या जो मेरी आवश्यकता है उस आत्मा से वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये उल्टे रूप का मोह, यानी वो भी हमारी बुद्धि को खींचता है। जब तक मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा उस आत्मा से, तब तक मेरे मन में उसका चिंतन, उल्टा चिंतन चलेगा, जिसको बाबा कहते हैं कि हम पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। चलाना चाहिए स्वदर्शन, लेकिन बुद्धि में जैसे ही वो आत्मा मेरे सामने आई, कौन सा चिंतन चलने लगेगा, उसके जो किए हुए कर्म हैं उनका चिंतन मेरी बुद्धि में चलता है। योग में भी ऐसी आत्माएं हमें डिस्टर्ब करती हैं। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो बुद्धि को कौन खींचकर नीचे ले आता है, एक अर्जेंट अनाउंसमेंट है, बहन करेगी।
10 भाइयों की अनाज की सेवा के लिए आवश्यकता है, भाइयों के तरफ से 5 नंबर की गेट पर राम सहारे भाई से मिले, अभी ही आवश्यकता है, तुरंत गेट नंबर 5 पर राम सहारे भाई जी से मिले। 10 भाइयों की आवश्यकता, युद्ध भाई।
तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो योग में भी हमें उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देती। हम बाबा की याद में बाबा से शक्तियां, बाबा से प्यार खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो कर्म के हिसाब किताब के कारण उस आत्मा से लगी हुई होती है, तो वो कर्म बंधन का रूप बन जाता है। और जब वो पाप का बोझ होता है तो बाबा कहता है बोझ वाली आत्मा कभी ऊपर उड़ नहीं सकती, बोझ उसको नीचे ले आता है। फिर हम शिकायत करते हैं मेरा योग नहीं लगता, हम योग तो करना चाहते हैं लेकिन बाबा की याद में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? ये दोनों प्रकार के मोहों में से कोई ना कोई मोह का अंश का त्याग हमारा अभी तक नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि कई बार कई भाई बहने कहते हैं बाबा तो निराकार है ना, आकार है, और जब हमें यहाँ साकार में किसी की जरूरत है तो कोई साथी तो चाहिए, कोई दोस्त तो चाहिए, चाहिए कोई तो होना चाहिए जो हमारे दिल की बात सुने। तो बाबा को भी क्या कहते हैं हम, दिलाराम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाबा दिल की बातें सुन सकता है नहीं सुन सकता? बाबा कहते हैं जो परम भक्त हुए भगवान के आज तक, उन्होंने भी जब भी भगवान को पुकारा और भगवान पर निश्चय रखा, भगवान ने उनका भी साथ निभाया। सुनते हैं ना हम भक्तों की भी कहानियां, जबकि वो तो भगवान को उस परिचय से जानते भी नहीं थे। तो फिर आप तो बच्चे हो, और अगर उस निश्चय से बाबा के सर्व संबंधों का हमें अनुभव है तो बाबा निराकार आकार होते हुए भी साकार का अनुभव हमें करा देते हैं। ये बाबा के बहुत बच्चों का अनुभव होता भी है। हो सकता है कि कई बार बाबा किसी को निमित्त बना दे, बाबा निराकार है, लेकिन अगर हमने बाबा के ऊपर छोड़ा तो कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाती है, और इतना सहज वो कार्य हो जाता है या उस मुश्किल से हम निकल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कोई मुश्किल आई थी और वो पार भी हो गई और हमें समझ में आता है। तो बाबा ही मेरे जीवन का आधार है। हमारे जीवन के भी ऐसे कई अनुभव हैं जब हमने ऐसा महसूस किया कि बाबा के ऊपर छोड़ा तो बाबा ने जो कार्य असंभव था उसको बाबा ने बिल्कुल सहज संभव कर दिया। लगता नहीं था कि ये हो सकता है, या हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य की शक्ति पर, मनुष्य की शक्ति वो कार्य नहीं कर सकती जो भगवान की शक्ति कर सकती है। तो एक बार ऐसे ही हमको आना था, विदेश में हम सेवा पर गए थे, करेबियन कंट्रीज जो साउथ अमेरिका की तरफ हैं, यूएसए से नीचे साउथ अमेरिका, और दोनों के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन्हें करेबियन कंट्रीज बोलते हैं, जिन्हें लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के नाम से सब जानते हैं ना। तो वहां से जब लौटने की बात थी तो सुरीनाम एक देश है वहां पर, गयाना सुरीनाम, तो वहां से हमें वापस लौटना था और पूरा इंडिया तक आना था, वापसी थी, लेकिन वहां 2 फ्लाइट चेंज करना था, एक वहां ट्रिनिटाड में और दूसरा लंदन में। तो वहां जब मैं गई एयरपोर्ट पर तो जो मैंने टिकट दिखाया काउंटर पे, तो उन्होंने कहा कि ये टिकट से आपको प्लेन में सीट नहीं मिल सकती क्योंकि इस पर टिकट नंबर नहीं है। और उसी टिकट से मैंने कई जगह ट्रेवल किया था, लेकिन किसी ने मुझे ये बात कही नहीं, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और वो तो केवल लास्ट में रिटर्न होना था, तो अब जब वो मेरे को ये बात कहने लगे तो मैंने कहा कि ये टिकट से ही हमने ट्रेवल किया है, तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो उसने कहा नहीं, हम बिना टिकट नंबर के आपको इस टिकट से नहीं ले सकते प्लेन में, और आप नया टिकट भी बुक नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन प्लेन फुल है, हमारे पास कोई सीट नहीं है। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा इसके आगे पीछे कोई प्लेन जाने वाला हो, क्योंकि हमारी तो बैक टू इंडिया फ्लाइट है, अगर ये फ्लाइट मिस हुई तो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट वो भी मिस होगी तो ये पूरा का पूरा ट्रिप, ये पूरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, आज के दिन यहाँ से सिर्फ ये एक ही फ्लाइट जाती है, क्योंकि वो छोटा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, तो बहुत लोग ट्रेवल करते नहीं है, तो एक ही फ्लाइट जाती है सारे दिन में, दूसरी फ्लाइट ही नहीं है, मतलब जाना है तो उसी में जाना है। और ये सुबह का टाइम था जो हमारा अमृत वेले का टाइम होता है, तो मैं बाबा को याद करने लगी। मैंने कहा बाबा ही कुछ कर सकता है इसमें। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा कोई ऑप्शन आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है इस प्लेन में जाना। तो उसने कहा कि एक ही तरीका हो सकता है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई ना आए, और अगर कोई नहीं आएगा तो वो सीट आपको मिल जाएगी। अब ये कैसे कहें? तो मैंने कहा अच्छा कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा? तो उसने कहा बोर्डिंग पूरा हो जाएगा तभी पता चलेगा, और वो बोर्डिंग पूरा होने में अभी 2 घंटे लगेंगे, तो आप 2 घंटे इंतजार करो, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गई वहां एयरपोर्ट पे, वैसे भी बैठना ही होता है, और हमारा अमृत वेला होता है, तो बाबा को याद कर रही थी कि बाबा ये तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है और बहुत जरूरी है जाना, और टिकट भी काफी महंगा होता है, दुनिया के दूसरे कोने से इस कोने में आना, वो इस तरह से था। 2 घंटे हुए और मैं नहीं गई, वो खुद ही आए, काउंटर वाले खुद ही आए मेरे पास, क्योंकि मैं जहां बैठी थी वो उनको मालूम था, और उन्होंने कहा कि मैडम आप लकी हो, सचमुच एक पैसेंजर नहीं आया है, तो आपको सीट मिल जाएगी। तो देखिए बाबा कैसे हमें मदद करता है, और मुझे वो मिली, सीट मिली, और मेरी वो जर्नी सफलतापूर्वक हम पूरी कर पाए। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ही हमने समर्पण किया बाबा को, बाबा कैसे असंभव को संभव करता है वो वही जानता है। ये तो एक मिसाल मैंने सुनाया, ऐसे मेरे पास अनगिनत मिसाल है जब ऐसी स्थितियां पैदा हुई और उस मुश्किलों को भगवान ने सहज कर दिया, जो हम गीत गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों से कह दो कौन बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो सर्व संबंध बाबा से है, सारा मोह हमारा लौकिक अलौकिक से निकलकर बाबा की तरफ। बाबा कई बार कहते हैं, कई बार हम लौकिक से न्यारे हो जाते हैं, लेकिन वही जो संस्कार हैं फिर अलौकिक में काम करने लगते हैं। अलौकिक संबंधों में माना ईश्वरीय परिवार में जब हम आते हैं तो भी कोई ना कोई आत्माओं से समीप आ जाते हैं, किन्हीं से हमारे संस्कार मिलते हैं, किसी से गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं, हर एक का किसी का ज्ञान अच्छा होता है, किसी का योग अच्छा होता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, कला होती है, और यदि वो आत्मा भी हमारी बुद्धि को खींचती है, तो बाबा कहता है लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, कौन सी जंजीरें आकर्षित करने लगती हैं? सोने की जंजीरों के आकर्षण में आ जाते हैं। जैसे सीता को कौन ले गया, महलों को छोड़ करके वनवास में आ गए राम के साथ, महल छोड़ने में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन वो सोने का हिरण आकर्षित करके कहाँ ले गया, अशोक वाटिका में, रावण की वाटिका में ले गया, है ना। तो ऐसे ही कई बार ये सोने की जंजीरें जो हैं वो माया का रॉयल रूप बन जाते हैं हमारे लिए, तो ना अलौकिक में ना लौकिक में, दोनों ही प्रकार के संबंधों में ना तो लगाव झुकाव में आना और ना ही घृणा ईर्ष्या में आना, दोनों ही प्रकार के मोह का त्याग करना। और ये बाबा कहता है अंतिम पेपर होता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना। गीता का 18वां अध्याय है, 18वां अध्याय पूरा हुआ तब अर्जुन ने कहा अब मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। शुरू किससे हुआ? मोह से, कि ये मेरे ही संबंधी हैं, इनसे युद्ध करके अगर मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो वो मोह नष्ट करने के लिए पूरा गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने उनको दिया, जो भक्ति में सुनाते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण नहीं, श्री परमात्मा शिव ने जो हमें गीता ज्ञान दिया, तो उसका भी 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पर ही पूरा होता है। और इसीलिए बाबा की 18 जनवरी डेट है, 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, पूरी तरह से कर्मातीत बने। हम देखते हैं बाबा अंत समय में बच्चे बाबा के सामने थे, बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा, बहुत बच्चों से स्नेह था, सभी कहते थे बाबा मेरा है, कोई आत्मा ऐसी नहीं जो बाबा के लिए ये ना कहती हो कि बाबा मेरा नहीं। हम सबको भी, जो भी आज भी यहाँ बैठे हैं, भले हमने बाबा को नहीं देखा लेकिन कैसा फील करते हैं, बाबा मेरा है। तो इतना स्नेह बच्चों का और बाबा का भी बच्चों में, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मेरे दिल में हैं और हम कहते हैं बाबा हमारे दिल में हैं। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले किसी को भी याद नहीं किया कि वो मेरे सामने होते, वो मेरे सामने होते। हाँ, या इतना बड़ा यज्ञ अब कौन संभालेगा उसकी चिंता, थोड़ा डायरेक्शन दे दें। दादियां खड़ी थी बाबा के सामने, बड़ी दादी का तो हाथ लिया था बाबा ने हाथ में, लेकिन बिल्कुल न्यारे और प्यारे, यानी नष्टो मोहा पूरी तरह से बाबा की वो स्थिति थी। और एक सेकंड में जैसे कहेंगे कि पंछी उड़कर वतन में चला गया। तो हमारी भी अंतिम स्थिति की तैयारी इसी तरह की होनी चाहिए कि कोई भी आत्मा अंत समय में, या कोई भी परिस्थिति या कोई भी वस्तु, किसी में भी मोह हो सकता है, वो हमारी बुद्धि को ना खींचे, उसका त्याग। फिर बाबा कहते हैं आप सब ब्राह्मण बने हैं, हाँ त्याग के भी स्टेप्स हैं। तो बाबा ने एक बार बताया था जैसे राजयोग का साप्ताहिक कोर्स है, ऐसे त्याग के भी 7 पाठ हैं। तो अभी तक हमने 3 पाठ समझे, और चौथा पाठ बाबा कहता है विकर्मों का त्याग। ब्राह्मण बने माना श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा बन गए। बाबा के श्रीमत प्रमाण जो हम कर्म करते हैं वो सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। हम व्यर्थ और साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, विकर्म तो दूर की बात, ये बाबा कहते हैं। और विकर्म किसे कहते हैं? विकारों के वश होकर किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो विकारों के वश होकर के कर्म करना वो तो ब्राह्मण बनने के बाद काफी कम हो जाता है। अगर बाबा की पूरी दिनचर्या को हम अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने हमें दिया उस अनुसार हम चलते हैं, तो बाबा की आज्ञाकारी बनने की दुआएं जो हमें मिलती हैं उससे हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि विकारों के मोटे रूप तो हमारे सहज खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो उनके अंश वंश है, जिसे माया का रॉयल रूप बाबा कहता है, उसे हम परख नहीं पाते कई बार, और उसके वश होकर के भी हमसे विकर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अगर वो विकर्म भी होते रहते हैं तो फिर वो विकर्म हमें श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमें डबल फल की अनुभूति कराते हैं। वर्तमान में भी हम श्रेष्ठ कर्म का फल, खुशी और शक्ति का अनुभव करते हैं, साथ में अन्य आत्माओं को भी हम प्रेरणा भी देते हैं कि देखो जैसे ये श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, ये हिम्मत रखते हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं, तो अन्य आत्माओं की सेवा भी हो जाती है और हमारा भविष्य भी जमा होता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल पुण्य है और वो एक का पदम गुना बाबा कहता है, अगर एक एक कदम बाबा की श्रीमत अनुसार हमने उठाया तो हर कदम में पद्मों की कमाई हम जमा कर रहे हैं, तो वो हमारा भविष्य भी जमा होता है। लेकिन अगर हमने विकर्म किया तो 100 गुना दंड भी है, उसी अनुसार प्राप्ति भी है, तो उस अनुसार फिर हमारा ना भी हो जाता है। तो काम विकार के वश जो हम रॉयल रूप में आते हैं, जैसे लौकिक अलौकिक संबंध में हमने बात की, दैहिक आकर्षण में आ जाना, दैहिक दृष्टिवृत्ति में आ जाना, क्रिमिनलाइज जिसे हम कहते हैं, तो सूक्ष्म रूप में ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन कहां ना कहां मनसा वाचा जिसे संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जो बाबा कहते हैं वो हमारी नहीं रहती है, तो वो अंश है। फिर क्रोध के रूप में मानो हम किसी को जोर जोर से गाली नहीं देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, दुनिया वाले जैसे गुस्सा करते हैं मार पीट कर देना, कभी कभी तो ब्राह्मण भी अगर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो ऐसा कर भी देते हैं कि जोर से चिल्लाकर भी बोल देते हैं, किसी किसी को कई बार हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी ऐसा नहीं करते। मेजॉरिटी जो है नाराज हो जाते हैं, बोलेंगे नहीं, सामने सामने सहन कर लेंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन जो बाबा कहता है शुभ भावना शुभ कामना रहे, हम शांति दूत हैं, हम शांति देने वाले हैं, तो कोई अशांत आत्मा भी है, क्रोधित हो रही है, अपशब्दों की वर्षा कर रही है मानो हमारे ऊपर, हमारा अपमान कर रही है, लेकिन फिर भी हम शांत स्वरूप से उनको शांत कर पाए, जिसको बाबा कहता है फायर ब्रिगेड का काम करे। फायर ब्रिगेड क्या करती है, वो आग को बुझाती है ना, ये हमारा कर्तव्य है। उस स्थिति से हम नीचे आ जाते हैं और जब हम नाराज होते हैं हमारा मूड ऑफ हो जाता है, फिर हम उनसे किनारा करते हैं, ये सारे ये क्रोध के अंश है। तो इसका भी त्याग करना माना सदा, जैसे बाबा शांति का सागर है, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ, हम रहम दिल हैं, जैसे बाबा रहम दिल है ऐसे हम आत्माएं भी रहम दिल हैं। तो किसी के अगर तमोगुणी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं तो मुझे रहम दिल बनकर उस आत्मा को सहयोग देना है, उस समय मुझे ये स्मृति आए, तब हम उस परिस्थिति को सहज पार कर जाएंगे। अब लोभ में, लोभ का अंश क्या होता है, दुनिया वालों जैसा लोभ हमारे में नहीं होता है, हम कोई बहुत धन के पीछे साधनों के पीछे अपना सारा समय शक्ति लगाते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद हमें अपनी अविनाशी कमाई का महत्व समझ में आ जाता है, हमें पता है कि ये कमाई साथ में जाने वाली है, वो कमाई तो यहाँ ही रह जाएगी, तो फिर हम अपनी आवश्यकताओं की ही बात, बाबा ने जैसे कल भी मुरली में कहा कि अगर हमें पता है कि हमें रोटी टुकड़ खाने को मिल सकता है, जो पैसा है उससे ब्याज आता रहे और आराम से हमारी जिंदगी चल सकती है, तो फिर ज्यादा हम झंझट में क्यों जाएं? हम बाबा की सेवा में पुरुषार्थ में अपना समय सफल करें। और ऐसा बहुत बाबा के बच्चे करते भी हैं जो ये समझते हैं कि हमारे पास पर्याप्त है और हमें कोई बहुत अधिक भागदौड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में तो लोग सोचते हैं मेरी एक पीढ़ी दो पीढ़ी सात पीढ़ी खाए, इतना मुझे जमा करके जाना है, और हमें पता है अब पीढ़ियां तो रहने वाली ही नहीं है, खाएंगी पीढ़ियां अगर जमा भी करेंगे उनके लिए तो, है ना। तो वो सत्य ज्ञान की समझ आने के बाद ये परिवर्तन तो है ना, इतनी संतुष्टता तो हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन लोग किस चीज का होता है अंश वंश में, आवश्यकताएं, जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है आवश्यकता की तो हद होती है ना, अगर आवश्यकता ही बेहद में चली जाए तो लोग का अंश हो गया। अब मानो एक मोबाइल मुझे चाहिए, वो मेरी आवश्यकता है, चलो दो चाहिए वो मेरी आवश्यकता हो सकती है, पर दो की बजाय चार, इसे आवश्यकता कहेंगे? एक कार मुझे चाहिए वो मेरी आवश्यकता है, एक गाड़ी चाहिए वो आवश्यकता है। लेकिन अब नए मॉडल की कार निकली है वो भी मुझे चाहिए, इसको आवश्यकता कहेंगे? यानी साधनों में बुद्धि जाना। तो कई बार इस रॉयल रूप की माया से हम ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो पाते, और साधन हमारे को हमारी साधना की स्थिति से नीचे ले आते हैं। बाबा कहते साधन यूज करो, उसकी मना नहीं है। साइंस की जो इन्वेंशंस हुई हैं वो आप बच्चों के लिए ही हुई हैं, लेकिन वो हमें पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में मदद करे। अब मोबाइल आपके हाथ में है, उसमें सारा इंटरनेट है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है उसके पास व्हाट्सएप है, आप क्लासेस सुन सकते हैं, आप जो भी मुरली की पढ़ाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पुरुषार्थ में मदद करती हैं। तो यदि हमने उसे उस तरह से यूज किया तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा, हम गुड़ती कला का अनुभव करेंगे, वो साधन बाबा ने मुझे इसलिए दिया अगर हमने उसका सदुपयोग किया। और अगर दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग भी हो सकता है, आप जिस दिशा में ले जाओ। एक चाकू अगर हमारे लिए उपयोगी हो सकता है तो एक चाकू से किसी की जान भी जा सकती है, दोनों ही तरह से उसके प्रयोग हैं। तो साइंस के जितने भी साधन हैं वो जितने ही कंस्ट्रक्टिव हैं उतने ही डिस्ट्रक्टिव भी हैं, आपको वो नाश भी कर सकते हैं। अगर वो आपका उत्थान कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। अब हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, यानी मेरी कंट्रोलिंग पावर कितनी है उस पर निर्भर करता है। अब आप इंटरनेट में गलत दिशा में चले गए तो आपका सारा पुरुषार्थ, जितना भी आपने पुरुषार्थ जमा किया अपना, तो लोभ बाबा हमें कहता है कि साधनों का उपयोग इस तरह से करना है। हम ब्राह्मणों का जो लोभ होता है वो ज्यादातर उसमें ही होता है कि वो मुझे साधना की स्थिति से नीचे ना लाए, बल्कि मेरी साधना की स्थिति को उच्च करे। और दूसरी बात बाबा कहता है, जैसे कई लोगों को शौक होता है कि हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, या जो भी हम सामान वस्तु यूज करते हैं उसकी कुछ क्वालिटी जो हम पसंद करते हैं वो उसी तरह का होना चाहिए। तो फिर बाबा कहता है अगर चत्तियों वाला कपड़ा मिले तो भी अच्छा, और बहुत अच्छा कपड़ा मिले तो भी बहुत अच्छा, 36 प्रकार का भोजन खाने को मिले तो भी बहुत अच्छा, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिले तो भी बहुत अच्छा, हर हाल में राजी। ये त्याग है, जैसे भक्ति मार्ग में सन्यासियों को दिखाते हैं ना, कितने भी कोई उनके सामने, जैसे हम कई बार जैनियों को देखते हैं, वो कभी भी किसी के पकवान को रस लेकर नहीं खाएंगे। वो जिसके घर जाते हैं, आप में से जो जैनी होंगे वो जानते होंगे, वो सारा चीज अपने एक ही बर्तन में डलवा लेते हैं, जो भी सब सब्जी रोटी खिचड़ी दाल जो कुछ भी होगा उसको मिक्स करके खाएंगे, है ना। एक ही चीज का टेस्ट लेना, ये बहुत स्वादिष्ट बनी है और उसमें आसक्ति जाए, जैसे कोई चीज अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा खाते हैं उसको कि ये मेरी पसंद की है, ये मुझे और चाहिए। ब्रह्मा बाबा के टाइम में ऐसी कई बातें, अभी आप 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस है, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं वो आपको ऐसे कई बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाएंगे, कैसे बाबा इन बातों को लेकर टेस्ट पेपर लेते थे। जैसे एक आनंद किशोर दादा थे अपने, तो एक बार आइसक्रीम बनी होगी या आई होगी पता नहीं, आइसक्रीम मतलब सबको दी खाने के लिए, तो सबने आइसक्रीम खाना शुरू किया, तो बाबा ने पूछा कि बच्चे आइसक्रीम खाने के पहले बाबा को याद किया? तो बाकी सब ने कहा और आनंद किशोर दादा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो भूल गया। तो बाबा ने कहा बच्चे आइसक्रीम देख के बाबा को भूल गए। फिर बाबा ने कहा इनके लिए दूसरी आइसक्रीम लाओ और ये बाबा को याद करके फिर आइसक्रीम खाओ। तो बाबा हमेशा कहते हैं खाओ पियो मौज करो, मना नहीं है, लेकिन किसकी याद में? बाबा की याद में। बाबा याद है तो फिर जहां बाप है वहां पाप नहीं, यानी माया भाग जाती है, और अगर बाबा याद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो अंश, लोक का अंश हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति आसक्ति की उसमें हो जाती है। अंत समय भी, जैसे चाय पीने की बात कई बार कहते हैं कि मानो चाय पीने की आदत है हमारी और अंत समय में चाय नहीं मिली, अंत समय आ जाए और चाय के बिना हमारा काम नहीं चलता है, चाय के बिना मुझे सिर दर्द हो जाता है, तो हो सकता है कि वो चाय ही हमें फेल करने के निमित्त बन जाए, वो बुद्धि को इतना हलचल में ला सकती। कोई भी चीज की ऐसी आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये सूक्ष्म चेकिंग है अपनी कि हम त्याग की स्टेजेस में कहाँ तक आए हैं। ये सब बाबा तो हमें फुल संपन्न बनने की बात बताते हैं कि जब हम संपन्न और संपूर्ण होंगे तो ये सब बातों का त्याग होगा, तभी हम फुल तपस्या, यानी हमारी जो पूरी बुद्धि की लाइन है बाबा के साथ लगी हुई होगी, बाबा की लगन में मगन होना हमारे लिए सहज होगा। त्याग से फिर तपस्या, और जब हम त्याग तपस्या से सेवा करते हैं तो सेवा में हमें सफलता मिलती ही है, वो सेवा फिर हमेशा फलदायक सेवा हो जाती है। तो ऐसे ही फिर मोह की बात कहेंगे तो मोह माना लोभ होता है, चाहिए चाहिए, और मोह होता है जो है मेरे पास उसको हम नहीं छोड़ सकते, उसको अगर हम छोड़ेंगे तो हमें बहुत दुख होगा, मोह हो गया उसमें और वो छूटेगा तो चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है, दोनों में से जो भी है, तो जितनी मात्रा में मोह होगा उतना ही दुख होगा। अगर वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया मानो, या वो व्यक्ति चला गया, या वो कहेंगे वस्तु जिससे हमें बहुत मोह था वो गुम हो गई, चोरी हो गई, जो भी, तो जितना मोह है उतना ही उसका दुख हम महसूस करते रहेंगे। मानो सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई शरीर छोड़ देता है, दुख होता है हमको? सिर्फ हम समाचार सुन लेते हैं, हाँ, फिर हम सोचते हैं तो होते ही रहते हैं, है ना, कुछ नहीं, कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई शरीर छोड़ता है, दुख होता है थोड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उससे हमें हमारी दोस्ती है, परिचय है, थोड़ा बहुत स्नेह भी है, तो उसी मात्रा में थोड़ा हमें दुख होता है। पर अगर मेरे परिवार में कोई शरीर छोड़ता है, कोई हमारा प्रिय है, बहुत ही समीप, मानो पति पत्नी में से, बेटा बेटी में से कोई शरीर छोड़ता है, तो कितना दुख होता है? कितना होता है? क्योंकि मोह है, मोह ज्यादा है, तो जितना मोह ज्यादा है उतना ही हमने उस दुख को अनुभव किया, और इसीलिए बाबा कहता है कि मेरा मेरा अभी से निकालना है। और बहुत भाई बहनों को हम अनुभव करते हैं, जो बीके भाई बहने हैं, कभी उनके समीप संबंधी ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो अब वो इतना दुख अनुभव नहीं करते। नहीं तो कई लौकिक वाले जब जो ज्ञान में नहीं चलते और यहाँ आते हैं, कभी राजयोग शिविर में किसी के जवान बेटे ने शरीर छोड़ा, मानो उसको 6 महीना हुआ, वो मिलेंगे, बात करेंगे, वो कहेंगे बहन जी वो जब से बेटे ने शरीर छोड़ा है एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम रोते नहीं, उसकी याद ही आती रहती है, हमको भूलती ही नहीं है, इतनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके कारण, जैसे वो व्यक्ति क्या गया उनका जीवन भी समाप्त हो गया, इतना दुख होता है, क्योंकि बेटा था, जवान बेटा, पाला पोसा उसको, तो मोह हो गया उसमें। लेकिन जब हम ज्ञान युक्त जीवन जीते हैं तो उस तरह का मोह, ऐसे अब मैं घड़ी भी देख रही हूँ, ऐसे भी कई मिसाल हैं हमारे यहाँ कि कैसे कईयों के पति या बेटे ऐसे शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपना कर्तव्य है जो उनके प्रति पालन करते हैं सहज भाव से, और फिर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा ही संसार है, बाबा ही सर्व संबंधी है, बाबा पतियों का पति मिला है, बाबा हमारा बेटा भी है, वारिस भी है बाबा से हम। जब वो संबंध अनुभव करते हैं तो सचमुच बाबा वो संबंध अनुभव कराता भी है। फिर अहंकार की बात जहां आती है तो बाबा उसको डबल अंडरलाइन करते हैं, मैंपन और मेरापन, ना ये अहंकार को जन्म देता है। मैंपन यानी हमारे अंदर कोई ना कोई विशेषताएं हैं, किसी के अंदर बुद्धि बहुत अच्छी होती है, किसी के कोई गुण बहुत अच्छे होते हैं, कलाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बाबा की देन है, जो भी हमें विशेषताएं मिली हैं बाबा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है सेवा के लिए, या दूसरों की भी जो विशेषताएं हैं ये भी बाबा की देन है, ना उनसे प्रभावित होना है ना अपनी विशेषताओं से प्रभावित होना है। तो फिर उसमें कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्यों क्या में हो जाते हैं, मेरे अंदर इतनी विशेषताएं हैं फिर भी मुझे समझते नहीं, मुझे चांस नहीं देते हैं, मुझे पूछते नहीं, हम भी ये कर सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये अभिमान। बाबा कहते हैं जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, क्यों क्या में चले जाते हैं, तो फिर वो एक सिर काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा काटते हैं तो तीसरा। ये संकल्प रूपी सिर, वो दिखाया स्थूल रूप में है, लेकिन यहाँ ये संकल्प रूपी सिर जो है वो उस रूप से अपना सिर उठाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा को समर्पित किया, बाबा की देन है, बाबा सेवा में लगाएगा, जिस सेवा में लगाएगा उस सेवा के लिए हम हाजिर हैं। फिर सूक्ष्म अभिमान होता है ना, तो अपने को राइट समझते हैं, कभी भी अपने को गलत समझते ही नहीं, मैं ही राइट हूँ, मैंने जो कहा वही सही है। फिर अगर दूसरा नहीं मानेगा तो बहस करने लग जाएंगे, फिर उसकी बहस का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, फिर गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि मेरी बात नहीं मानी जा रही, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो फिर उसका अंतिम परिणाम गुस्से में आ जाएंगे। गुस्से में हम समझ सकते हैं, तो वो पूरी तरह से फिर माया का प्रभाव हो जाता है। जिसके अंदर सूक्ष्म अहंकार होता है, रौब जमाने की भी उनको आदत होती है, दूसरों को कंट्रोल करने की भी उनको आदत होती है, सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए, वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी भी गलती होगी तो मानेंगे भी नहीं, मेरी गलती अगर मैंने मान ली तो फिर कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। जैसे अभी कल वरदान था, वरदान में बाबा ने ये बात कही महसूसता की शक्ति को लेकर के, कि हम महसूस करेंगे ही नहीं उस बात को कि वो मेरी कोई गलती है, रियलाइजेशन पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये सारे विकारों के अंश वंश का त्याग, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और फिर ये त्याग होने के बाद ही हम सर्वंश त्यागी बनते हैं। इसको बाबा कहते हैं त्याग की लास्ट स्टेप है, मेरे पुराने संस्कारों के अंश वंश का भी त्याग माना सर्वंश त्यागी। और जो सर्वंश त्यागी हो जाते हैं वो महादानी वरदानी होते हैं, वो आत्माएं वरदानी मूरत हो जाती हैं, साक्षात्कार मूरत हो जाती हैं, जो हम दादियों में देखते हैं उनकी वो स्टेज है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे मम्मा थी। फिर वो जिन भी आत्माओं के प्रति जो संकल्प करेंगे, जो बोल बोलेंगे, वो उन आत्माओं के प्रति जैसे वरदान हो गए और वो सफल होते हैं, हर कार्य में उनको वो सफलता प्राप्त होती है। तो ये था कि हमें त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी, त्याग तपस्या के आधार पर ही हमें बाबा की सेवा में हाजिर रहना है। ओम शांति।
ते क्या है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे।
दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे।
तेरा है दान बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। Thank you.